शांत लहरों को सुनामी में न परिवर्तित करें। छोड़ दें ये जिद कि हम भी प्रेम परिभाषित करें। सच में बहुत कठिन है प्रेम को परिभाषित करना, क्योंकि प्रेम के इतने रंग इतने रूप होते हैं कि इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। शब्दों की सीमा में बांधना तो असंभव ही है। आज हमने जिनको आमंत्रित किया है उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें प्रेम के रंग भरे हुए हैं, और इन रंगों में इतनी विविधता है कि आपने ऐसा कम ही देखा सुना होगा। दोस्तों, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हमारी आज की मेहमान शाबिस्ता ब्रिजेश जी से जब मैंने बात की तो निसंदेह गर्व भी मुझे हुआ कि कोई महिला कैसे इतनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रूढ़ियों और परंपराओं को इतने शालीन और सम्माननीय तरीके से तोड़ते हुए भी निभाती चली गई। शाबिस्ता जी ने एक हिंदू लड़के ब्रिजेश जी से विवाह किया, और न सिर्फ विवाह किया बल्कि दोनों धर्मों और संस्कृतियों को समान आदर देते हुए इस तरह आत्मसात किया कि प्रेम का एक पवित्र रूप समाज के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विवाह के बाद जब उनको अपनी कोई संतान नहीं हुई तो एक अद्भुत निर्णय पति पत्नी ने लिया, और विकलांग और असहाय बंदरों को उन्होंने अपने घर में रखकर ऐसे पाला जैसे उनके अपने बच्चे हों। एयर कंडीशनर और हीटर लगे कमरों में उनको रखा। उनके इस कार्य को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी खूब प्रचारित प्रसारित किया गया। लेकिन भावुकता और वात्सल्य से भरे इस दंपत्ति का दिल ये बात नहीं स्वीकार कर सका कि उनके बच्चे जैसे बंदर को मीडिया की भीड़भाड़ से कोई कष्ट हो, इसलिए उनको प्रसिद्धि पाने की चाह ही नहीं रही। वरना कोई और होता तो इस बात का खूब लाभ उठा सकता था। अपने प्रिय बंदर चुनमुन के नाम पर आपने चुनमुन ट्रस्ट की स्थापना की, और इसके द्वारा आप लोगों ने गरीब बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। है ना प्रेम का अद्भुत रंग। शाबिस्ता जी एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवित्री भी हैं। पूरे देश में कई मंचों पर काव्य पाठ करके इन मंचों की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी सम्मानित कर चुके हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा भी आप सम्मानित की जा चुकी हैं। और भी न जाने कितने सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 वर्षों तक अंतराल नाम से आपने एक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली। साहित्य के कई विधाओं पर आपने अपनी लेखनी चलाई। आपके व्यक्तित्व में राजनीतिक रंग भी देखने को मिलते हैं। आप रायबरेली में सभासद नगर पालिका के पद पर रहीं, और ये पद आपने अंतर जनपदीय जहर खुरानी गिरोह के गैंग लीडर को हराकर प्राप्त किया। उनकी शख्सियत ही इतनी निर्भीक और साहसी है कि हर चुनौती उनके सामने धराशायी हो जाती है। आप 3 बार जिला सहकारी बैंक की डायरेक्टर भी निर्वाचित हुई। किसी एक व्यक्ति में ही इतने सारे रूप, और वो भी प्रेम और त्याग से भरे हुए, कम ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाबिस्ता ब्रिजेश जी से ही बात करते हैं। नमस्ते शाबिस्ता जी, चुभन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद भावना जी, आपको भी नमस्कार, और साथ ही साथ दीपावली की भी शुभकामनाएं।
जी आपको भी। और शाबिस्ता जी, आपकी शख्सियत ऐसी है कि जब आपसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं समझ ही नहीं पा रही कि कहां से आपके साथ बात शुरू करूं। और मैं सोचती हूँ कि शाबिस्ता ब्रिजेश इस नाम से ही शुरू करते हैं। स्पष्ट है कि आपकी शादी एक हिंदू घर में हुई, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज के समय में ये सब कितना मुश्किल था या सब कुछ सहजता से हो गया, इस बारे में आप कुछ बताएं हमें।
जी, हमारा नाम ही ऐसा है कि जहाँ नाम देखा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम है, है कौन? आप ये
जी
बताएं कि फेसबुक पर जो नहीं सबसे ज्यादा उस वक्त बड़ी अजीब सी कैफियत होती है जब हम जो लिखते हैं उसको लोग कम पढ़ते हैं। पहले पूछेंगे कि आपका नाम कैसा है, आपका नाम क्या है। तो शविस्ता ब्रजेश, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो संस्कृतियां कहीं आपस में मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने इंटर रिलीजन मैरिज किया था तो हम
जी
लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि हम लोग कोई कास्ट नहीं लगाएंगे आगे, बल्कि हम लोग अपनी जिंदगी को प्रतीक बनाएंगे दो संस्कृतियों के मिलन में। इसलिए जो है हमने अपना नाम शबिस्ता ब्रिजेश रखा। और यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काम बहुत कठिन था,
जी
लेकिन हम कहेंगे कि हमारा सौभाग्य था कि बड़ी सहजता से हम लोगों ने ये मैरिज किया, और न ही कोई बवाल हुआ, न ही कहीं धार्मिक उन्माद फैला। क्योंकि मेरे विचार से शायद ये भी हो सकता है कि हम लोगों के घर वाले वेल कल्चर्ड थे, और हमारे पापा तो बहुत ही कहना चाहिए धर्मनिरपेक्ष नहीं। देखिए भावना जी, एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन
जी
सवाल आज देश में धर्मनिरपेक्षता की नहीं है, सर्वधर्म संभव का।
वाह, बहुत अच्छी बात आपने।
वो सर्वधर्म संभव का था। हमने सभी धर्मों को जिस तरह से अपने धर्म को पढ़ा था, उसी तरह से हमने हर धर्म को पढ़ रखा था। तो आपसे बताएंगे, जब हमारी मैरिज हुई तो हमको कहीं कुछ ये नहीं लगा कि कहीं से हमको कुछ सीखना पड़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना जानते थे सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, कि हमारा ससुराल जो है, हमारे ससुराल वाले भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे हमको इतना कुछ आता है। जबकि
जी
मेरे विचार से अगर कोई भी इंसान ये सोचे कि हाँ उसे इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज करनी है, तो सबसे पहले जरूरत होती है कि आप वहां के कल्चर से पूरी
जी
तरह से वाकिफ हो, पूरी तरह से परिचित हो। क्योंकि अगर आप बिना परिचित हुए किसी की सूरत पर मर मिटे, तो मेरे ख्याल से ये एक अंधा प्यार होता है।
बिल्कुल
और
बिल्कुल
जब आप उसके धर्म को, उसकी संस्कृत को समझ कर अपनाते हो, हृदय से एडॉप्ट करते हो, जोर जबरदस्ती से एडॉप्ट नहीं करते, तो मेरे विचार से ये शादियां बड़ी सरल हो जाती है और बड़ी सहजता से ये जीवन कट जाता है।
वाह, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और होना भी ऐसे ही चाहिए ना, तो खाली दिखावा हो जाता है इस तरह से करना तो।
वो तो मतलब एक तरह से कहना कहना चाहिए ना, कि मैं मतलब यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि निष्काम भावना नहीं रहती जिसमें
बिल्कुल
आप केवल एक को देख रहे हैं, बल्कि ये जो शादियां होती हैं वो दो संस्कृतियों का मिलन होती हैं। पहले आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृत को उसके निकट तो लाए। आप कहीं पर गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हमारा लीजिए,
जी
कि हमने शादी किया, शादी करने के बाद हम ब्रजेश जी के घर में जाते, ठीक है, और
जी
जाते साथ हम वहां पर जो है अल्लाह अकबर करने लगते, तो एक बार क्या मतलब उन लोगों को क्या लगता कि कहीं से अजायब घर से कोई दूसरे ग्रह का प्राणी आया है। तो हमने
बिल्कुल
ये नहीं किया, हम लोगों का ये था कि हम लोग अपने किरदार से एक दूसरे के घर वालों का दिल जीतेंगे, और
वाह
वो हमने जीता। आज हमें गर्व है कि मेरी माँ, मेरे घर वाले ब्रजेश जी को सबसे अधिक सम्मान देते हैं, और ब्रजेश के घर वाले हमको सम्मान देते हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, तो वहां हम केवल उसकी पत्नी बनकर नहीं जा रहे, बल्कि एक कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हुए हम वहां पर जा रहे हैं। जब आप ये सोचोगे तो आप ऐसा कभी कोई काम नहीं करोगे जिससे आपके माँ बाप को, और कहना ये चाहिए कि पूरे कौम को सर झुकाना पड़े।
बिल्कुल,
बस
बहुत अच्छी बात आपने कही। कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप दोनों ने, मैं तो ब्रिजेश जी को भी कहूंगी, आप दोनों ने इस चीज को करके दिखाया, तभी दोनों तरफ के परिवार वालों ने आपको खुले दिल से स्वीकार किया।
और अच्छा लगता है, सच बताएं आपसे, कभी ईद होती है तो मेरे ससुराल वाले मेरे घर होते हैं, होली दीपावली होती है तो मेरे घर वाले ससुराल में होते हैं, तो एक बहुत अजीब सा, अच्छा सा, अनूठा सा एक संगम बनता है। लेकिन वही
जी
कहते हैं ना कि किसी सुरेंद्र सुकुमार जी लिखते हैं कि हर शिखर पर सरित के उद्गम नहीं होते, सांत्वना के चार पल भी कम नहीं होते, और डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है, पांव धोने के लिए संगम नहीं होते, तो डूबना पड़ता है इस
बिल्कुल,
जिंदगी को जीने के लिए, शबिस्ता ब्रिजेश बनने के लिए।
वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसीलिए मुझे लग रहा था कि जब से मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि आपको बुलाना तो बहुत जरूरी हो जाता है चुभन पर, क्योंकि इतने सारे आपके व्यक्तित्व के इतने सारे रूप हमें दिखाई दिए। और जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ से बात शुरू करूं, आप एक इतनी अच्छी कवित्री भी हैं।
देखिए भावना जी, कविता तो आपसे बताएंगे, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों ही उर्दू के शायर थे, और कहना ये चाहिए कि एक
अच्छा,
खानदानों के शायरों के ही खानदान में हमने जन्म लिया था। तो हमारे यहाँ महफिलें होती थी
जी
जिसमें बड़े बड़े शायर कृष्ण बिहारी नूर जी, कुमार बाराबंकी जी आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली पंक्ति कब लिखी थी। मेरी मौसी का नाम शाहाना है और उनको लोग शॉर्ट फॉर्म शन्नो कहते हैं। तो उस वक्त तो मेरी उम्र
अच्छा
7 या 8 साल रही होगी। मेरे पापा ने जो है कहा कि आज मैं तुम्हारी पर मौसी पर शेर सुनाता हूँ कि शहाना नाम है शन्नो सभी को भात, शन्नो बड़ा सुहाना है। तो अब ये
जी
कहकर पापा मुझ गए, पापा ने कहा, मम्मी की तरफ देखा, उन्होंने कहा
बिल्कुल
दूसरी पंक्ति जो है वो बन नहीं रही। तो हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से, हमने कहा हम बनाए, तो पापा ने कहा कि बोलो क्या कहना है। तो हमने
जी
कहा शहाना नाम है, शन्नो बड़ा सुहाना है, और कहे ब्रांडी को ठर्रा यही जमाना है। तो हमारे पापा बहुत, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है वो ये बात है कि हमारी जो बिटिया हुई वो उसका भी अंदाज शायराना है। तो हमारे पापा ने उनको बहुत प्रेरित किया, लेकिन हमको ये था कि अगर हम उर्दू में देखे लिखेंगे तो कहीं ना
जी
कहीं हमारे मम्मी पापा की छाप हम पर पड़ती
आ जाइए, बिल्कुल
हमारी। और कल को लोग ये भी कह देते कि मम्मी पापा शायर थी, झटक पटक लाई है ना जो चल रहा है ट्रेंड आज। तो हमने कहा कि नहीं पापा जो है हम नहीं लिखेंगे, और मैंने लिखा भी नहीं। जब शादी हुई आपसे बताएं, तो उस समय जो है शादी के बाद जो है वो हमारा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया था। हम लोग
जी
पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते थे, तो उस वक्त जो है बहुत आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे। तो मैं एक गोष्ठी में गई, तो वहां पर गोष्ठी चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भी कविता पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा यहाँ अपनी पढ़ी जाती है, तो हमने कहा हम से दूसरे की पढ़ेंगे।
जी
तो उन्होंने कहा पढ़ लीजिए आप। ब्रजेश जी बहुत देख रहे थे, तो मैंने पहली कविता लिखी कि बहुत मस्जिद को माना, दिल से पूजा था शिवाले को, मगर तरसा दिया तूने हमें एक एक निवाले को। रहा धनवान खुश देखा तिजोरी और ताले को, इधर हम देख के रोया किए गुर्बत के छाले को। और नहीं इंसाफ की आवाज कोई तुमसे रखती हूँ, मैं बागी हो गई बस आज ये ऐलान करती हूँ। तो जब मैंने ये कविता लिखी तो दूसरे दिन मैंने देखा कि सभी पेपरों की हेडलाइन गई थी। तो मैंने तो नहीं पहचाना, लेकिन ब्रजेश जी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, और ब्रजेश जी ने मुझसे कहा कि तुम लेखन करो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है कविता की। तो मैंने पहली कविता लिखी कि दो दिल की मोहब्बत का अंदाज निराला है, एक दिल में तो मस्जिद है दूजे में शिवाला है, और आसानी से मिलते हैं मस्जिद व शिवाले भी, मुश्किल से मुयस्सर अब रोटी का निवाला है। और बस फिर इसके बाद मुड़कर नहीं देखा। और मैंने मुझे ये कहना चाहिए कि आज जो देश भर में हमने कविता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, उसमें सारा श्रेय मैं ब्रजेश जी को ये दूंगी। कहते हैं किसी कामयाब मर्द के पीछे एक नारी होती है, लेकिन मैं कहूंगी यहाँ पर कि कभी कभी किसी कामयाब नारी के पीछे भी एक
नर
ऋषि हो।
होता, बिल्कुल आप दोनों ही एक दूसरे की प्रेरणा बने, मुझे लगता है जहां तक।
हाँ जी,
और आपकी कविताओं को अब मैं जितना अभी सुनती हूँ तो वीर रस से परिपूर्ण है, आपके ओज का स्वर उनमें मुखरित होता है। तो ये बताइए कि वीर रस ही क्यों आपने चुना लिखने, क्या शुरू से ही आप वीर रस में लिख रही थी?
नहीं बताएं आपसे, हास्य
जी
रस में जवाब दूं ना, तो जब पति पत्नी 24 घंटे एक साथ रहते ना, तो दोनों में वीर रस ही जन्म लेता है। श्रृंगार श्रृंगार फिर कहीं खो जाता है। वैसे भी कहते नहीं है कि शादी से पहले जो है वो प्रेमिका चंद्रमुखी लगती है, फिर जब शादी करके आती है तो नागमुखी, और फिर थर्ड स्टेज आती है ज्वालामुखी। तो हो गया ना वीर रस। और
कहीं आप इसका मतलब अब
और दूसरी बात बताए ना, बचपन से जैसे जो हमारे पिताजी ने हमको शौर्य गाथाएं सुनाई थी, राणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह जी की, ठीक है, तो
जी
कहीं
जी
ना कहीं झुकाव जो है वो वीर रस की तरफ ज्यादा होता चला गया।
जी
तो हमने हमें ये लगा कि वीर रस ही लिखना चाहिए। बाकी गीतों पर भी हमने बहुत काम किया, और मेरी 10 किताबें जो है वो प्रकाशित है, जिसमें हमने सवैया, छंद और गीत, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, सब कुछ पर हमने लिखा है, सब पर लेखनी चलाई है। लेकिन सबसे प्यारी विधा जो है वीर रस लगती है,
वाह
मंचों पर वीर रस ही पढ़ते हैं। और उससे एक बात और भी रहती है, आपसे बताएं कि जब
जी
मंच पर वीर रस आपको पढ़े ना, तो सामने कितने ही खराब श्रोता क्यों ना बैठे हो, अपने आप कहीं ना कहीं वो अंदर से भयभीत रहते हैं। तो आप ये भी समझ सकती हैं कि एक तरह से गीत अगर कोई पढ़ रहा है, आपने देखा ना आजकल का माहौल जो चल रहा है कि किसी कवित्री ने अगर पढ़ा झूम कर श्रृंगार रस, तो भी नीचे
जी
से ऐसे ऐसे स्वर आते हैं जो कम से कम हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
बिल्कुल ठीक
इस
आपका,
सुना मंचों पर
वो
पढ़ने के
मंच पर
बाकी
भी और सोशल मीडिया पर भी आजकल इतना कुछ हो गया कि आप मतलब कुछ भी लिखो कुछ भी बोलो तो इस तरह के कमेंट्स आने लग जाते हैं, तो अच्छा तो नहीं लगती ये सब चीजें।
हाँ। अब
लेकिन
बता तो रहे हैं कि कभी यहाँ ये कहा जाता था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं,
बिल्कुल
आज आपसे बता रहे हैं कि कोई भी, मतलब देखा होगा आपने कोई भी समाज सेविका, कोई भी, हम कहते हो किसी भी विचारधारा की हो, लेकिन जिस तरह उसको ट्रोल किया जाता है ना, तो बहुत भद्दा, बहुत ही अपमानजनक सा महसूस होता है। किसी दूसरे को भी करता है, लगता है कि नारी शक्ति पर अगर किया इसने तो हम ही पर किया, ऐसा प्रतीत होता है।
यहीं पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी शाबिस्ता जी, अब मैं सोशल मीडिया की ही समय बात करूंगी कि आपको नहीं लगता कि कुछ महिलाओं की भी ये चीज होती है कि बहुत ज्यादा अपना एक्सपोजर, मतलब जैसे कोई भी बात आप अपनी कोई कविता ही डाल रहे हो उसके साथ आप पहले अपनी पिक डालोगे और उस पिक्चर को देख के लोगों के कमेंट्स आएंगे, आपकी रचना पर नहीं आएंगे लेकिन आपकी फोटो के ऊपर आएंगे ज्यादा कमेंट्स, तो ये सारी चीजें भी नहीं, हमारा ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, हम खुद से इन चीजों को करते हैं फिर होता है कि भाई इस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसा
हाँ
नहीं
जी,
आपको?
आपने भावना जी बहुत एक अच्छा प्रश्न उठाया, और मैं इसमें नारी को बहुत हद तक उत्तरदायी मानूंगी। आज की जो घटनाएं हैं,
जी
मैंने ये देखा, आपने देखा होगा कवि सम्मेलन के मंचों पर आपको कोई बूढ़ी और बदसूरत कवित्री नजर नहीं आएगी। तो ये क्या है, मतलब आपसे बताएं, हमसे आयोजक फोन करते ना तो पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, आपका रंग
बिल्कुल
कैसा है। तो हमने तो एक दिन पूछ दिया कि कवि सम्मेलन करवाना है या मुजरा करवाना है, सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या
सच में
करें,
आप
मतलब
इस तरह से
पूरे
आयोजक प्रश्न करते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार सुनने में आ रही है
जी
ये बात।
कवि सम्मेलन के आयोजक इस तरह के प्रश्न करते हैं, आपसे
जी,
बता,
समझ रही हूँ जी।
मतलब हम जब वो करते हैं ना, तो क्या बताएं आपसे कि कितनी पीड़ा होती है और कितना आक्रोश मन में आता है कि हम इतना गिर गए। मैकाले ने कहा था कि अगर किसी देश को मिटाना हो तो सबसे पहले कल्चर पर प्रहार करें।
बिल्कुल
मैकाले भले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नैतिक क्षरण हुआ है। आप देख लीजिए, कल जो है वो हम बाहर निकलते थे तो कितने सम्मानजनक नजरें हम लोगों की तरफ उठती थी, लेकिन आज निकलते हैं तो क्या है, कहीं लगाना लगा रहता है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, कहीं
बिल्कुल
शीला
बिल्कुल
जवान हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई, नारी झंडू बाम हो गई, ये सब क्या है, ये सब नैतिक क्षरण ही तो है। तो ये नारी सशक्तिकरण का मतलब केवल ये नहीं होता कि नारी ने सर्विस पा ली और बहुत पैसा कमाने लगी, ये बिंदु भी नारी सशक्तिकरण के हैं। और इसके
जी
लिए ये आपने बिल्कुल सच कहा, हमने ये देखा कि महिलाएं हैं, बल्कि महिलाओं की सादत से पुरुषों ने भी महिलाओं की जो प्रोफाइल बना रखी है उसमें एक से एक खूबसूरत महिलाओं की तस्वीर डाल देंगे। हम लोग चाहे जितना अच्छा लिखे, 100 150 लाइक मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन उनको आप देखिए कम से कम 500 600 लाइक मिल रही है तस्वीरों पर, तो कहीं ना कहीं
पांच
मानसिक
पांच हजार
दिया।
फॉलोअर हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारे तो इतने फॉलोअर हैं, हमें तो इतना लोग मानते हैं, लेकिन ये उनको मान रहे हैं या अब क्या बोलूं मैं इस बात पर कि
जी
उनको खुद सोचनी चाहिए ये बात। और कुछ लोग ऐसा करती हैं, कुछ महिलाएं, तो उससे फिर सबका ही मतलब सबके साथ ऐसा फिर होने लग जाता है।
सबके साथ ऐसा, बता तो रहे हैं आपसे, हम लोग दिन रात मेहनत करके समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, लिखते हैं तो 40-50 कमेंट आ गए तो बहुत अच्छा समझ लीजिए, लेकिन अगर आप दूसरी देख लीजिए पोस्ट पर, जहां भी किसी की तस्वीर खूबसूरत लगी है, आप देखिए 60 साल से लेकर जो 18 साल तक के लोग लगे रहेंगे। मुन्ना, हम भी कहते मुन्ना भाई लगे रहो, ठीक है,
जी
ठीक।
वही
और आप
हमारे
सुनो,
कविता महादेवी वर्मा थी, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, क्या इन लोगों के व्यक्तित्व थे, कोई इस चीज पे जाता ही नहीं था कि कैसी है कैसी नहीं, खाली उनकी रचना धर्मिता देखी जाती थी, लेकिन बिल्कुल आपने
एक
कहा
कि रचना धर्मिता देखी जाती थी, कवित्री की सूरत नहीं बल्कि कविता देखी जाती थी। लेकिन
जी।
अब जो है वो उलट गया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी चेंजेस आ गए। और मैंने इसको लेकर एक छंद भी लिखा था, भावना जी
जी
अगर कहें तो सुना
जी
दूंगी एक
बिल्कुल
बार।
सुनाए, बिल्कुल सुनाए शाबिस्ता जी।
जब ये गाने सब मार्केट में आने लगे तो आप देखिएगा कि हमने जो है कहीं ना कहीं नारी को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए चार पंक्तियां दे रही हूं कि
जी
पछवा की हवा है चली जब से, पुरवा की हवा गुमनाम हुई, गुमनाम हुई सी आराधिका तो अब सुपनखा है सुनाम हुई। सुनाम हुई जब रूप बिका तब नारी है झंडू का बाम हुई, और बाम हुई जब माँ घर की मुन्नी बिटिया बदनाम
बहुत ठीक चाबिस्ता जी, आपने इन पंक्तियों को पढ़ा, और यहीं से देखिए कि क्या महिलाओं का, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या महिलाओं का भी, तो फिर इसमें हम उनको भी तो दोष दे सकते हैं ना, कि वो इस तरह के रोल क्यों करती हैं, वो एक्ट्रेस, या इस तरह के गाने क्यों गाती हैं, या हम लोग महिला होते हुए भी क्यों इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह की फिल्मों को देखते हैं, तो दोष तो सबका ही है। अगर पुरुषों का दोष दिया जाता है तो महिलाओं का भी है। और
जी,
जैसा कि
मैं
जी जी बोल जी बताएं क्या
पुरुषों को मैं दोषी नहीं ठहराती, कहीं ना
जी
कहीं हम नारियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।
जी जी और आप ये देखें कि जैसा हम लोग कह रहे थे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, या कहीं पर भी, तो इतना पुरुष नहीं, अगर देखा जाए तो पुरुष भी अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं, वो भी कुछ मतलब अपना स्टाइल मार सकते हैं उसमें, लेकिन पुरुष कम करते, महिलाएं ही ज्यादा करती हैं, तो ये चीज भी अच्छी नहीं लगती है देखने में।
हाँ
अब
बिल्कुल, बताइए, मतलब आप पूजा कर रहे हो, आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हो, तो आप अपने पति के लिए रख रहे हो ना,
जी
उसको सोशल साइट पर डालकर महज चंद सस्ते लाइक पाने के लिए, तो ये नहीं अच्छा लगता।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
आप समझिए, आप वैभव की तराजू पर अपनी सुंदरता को तौलना अच्छी बात नहीं होती मेरे विचार से। हो
बिल्कुल
सकता है
ठीक है,
कोई ना एग्री हो, लेकिन ये कह देना मेरी जिंदगी है, स्वतंत्र है हम, तो नारी स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द भी जुड़ा है, एक स्वतंत्रता बड़ी सम्मानजनक होती है, और मेरे विचार से नारी को सम्मानजनक स्वतंत्रता का
बिल्कुल।
सहभागी बनना चाहिए।
बहुत से लोगों की ये दलील होती है कि क्यों अंकुश लगाया जाता है महिलाओं के साथ, महिलाओं को हर चीज में बांधा जा रहा है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीजों के लिए लोग कहते हैं कि ना करो या अच्छा नहीं लगता, तो ये कोई प्रतिबंध लगाना तो ना हो गया, ये स्वतंत्रता का हनन तो नहीं है, ये तो एक समाज में एक, जैसा आपने भी कहा, कि विकृति फैलाई जाती है इस तरह की चीजों को करके।
देखिए, ये तो फिर अगर ये है तो हम ये कहेंगे कि अगर इस तरह की बातें होती रही तो आदर्श शून्यता की स्थिति समाज में आ जाएगी, कि जहां पर कोई आदर्श ही नहीं होगा। समाज में जीने के लिए हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है।
बिल्कुल
अगर प्राचीन काल से ही आप लीजिए तो आदिम युग में भी टोटमवाद चलता था, टोटम के माध्यम से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता था। तो अगर
जी
आज व्यवहार और स्वतंत्रता इन सबको नियंत्रित नहीं कर पाते तो फिर आदर्श शून्यता की स्थिति आ जाएगी समाज में।
जी जी बहुत अच्छी बात आपने कही।
पुरुषों पर भी तो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कौन पुरुषों से, क्या बच्चों को हम लोग सिखाते नहीं कि बेटा देखो सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, तो ये उनकी
बिल्कुल
स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध माना जाएगा?
जी बिल्कुल
भाई स्वतंत्रता और नैतिकता दोनों का समावेश कीजिए ना आप।
बिल्कुल
मतलब अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी तो जुड़े होते हैं।
बिल्कुल
जब
हमारी
सभी
सही बात करते जाएं और कर्तव्यों का पालन ना करें तो ये तो चीज है। अच्छा, फिर
बिल्कुल
मैंने एक चीज और देखी कि कम उम्र की लड़कियां 16 तक की लड़कियां करें तो ठीक है, कई मतलब काफी उम्र की भी औरतें अच्छे अच्छे पदों या किसी भी क्षेत्र में वो कोई कार्य कर रही है, वो भी अपने कोई मान लीजिए रही हैं, आप अपनी कविता के साथ एक चार पंक्तियां लिखेंगे उसके साथ अपनी पिक्चर लगा देंगी तो कमेंट्स जो आएंगे वो आपकी कविता पर नहीं आएंगे, आपकी तस्वीर पर आएंगे, तो कैसे
बिल्कुल
हमको कैसे इस चीज से अच्छा लग सकता है? मैं तो ये नहीं, खुद मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ।
जी। अब आप ये बताइए, अगर आपको रचना की सार्थकता देखनी है, मैं आपसे बताऊं कि मैंने तो बहुत करीब से देखा है मंचों को, ठीक है,
जी जी
तो मुझको हंसी आती है जब मैं देखती हूँ कि मतलब कवित्रियों का जब कभी देखा ना, सामान तो तरह तरह के, मेकअप बॉक्स भी है, चूड़िया भी है, मैचिंग मैचिंग ज्वेलर वो भी है, ज्वेलरी भी है, ठीक है। तो
जी
उन्होंने कहा, हमने पूछा भी कि यार हम लोग कविता सुनाने आए हैं, ये सब जो है क्यों मेकअप करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आउट हो जाओगी मंच से
अरे
अगर ये सब नहीं करोगे। लेकिन खैर मुझे, मैं कहूंगी कि मैंने करीब 98 से लिखना शुरू किया और आज 2021 है, मैं किसी भी मंच में पर शायद सिवाय बिंदी के अलावा, और कपड़े भी
जी
वही जो रोज सलवार और सूट पहनती हूँ या साड़ी, इसके अतिरिक्त तो मैंने कभी कोई मेकअप नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी मंच पर फेल हुई हूँ, मैंने हर मंच पर जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रमाणित किया कि हाँ हम अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि ये श्रोताओं की भी गलती नहीं है, आप श्रोताओं को जैसा खाना खिलाओगे वैसे ही उनकी आदत बनती चली जाएगी।
बिल्कुल
मुझे
सही
मुझे
कहा।
देखकर तो कभी श्रोता ऐसी मांग नहीं करते कि आप जो है ये कविताएं सुनाइए, वो कविताएं सुनाइए, मैं उन देशभक्ति की सुनाती हूँ, उसी रस में सराबोर हो जाते हैं। तो ये अपने पर डिपेंड है ना कि आप कैसा लोगों को दे रहे हो, जैसा आप दोगे
आप
वैसा ही
अपना
आपको
और
फल।
कैसा एक बना लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसे कोई दूसरा नहीं बनाएगा।
जी।
अच्छा शाबिस्ता जी, आपने अपनी कविताओं की बात की, रचना हमारे श्रोताओं को सुनाए।
किस रस में सुनना चाहेंगे?
जो भी रस आप सुना दे।
देखिए वीर रस की कविताएं तो बहुत लंबी है, मैं
हर और यूट्यूब में हर जगह आपकी वीर रस की कविताएं हैं, आप
हाँ जी, हम आपको एक गीत सुना रहे हैं, सुनिएगा। एक दिन ब्रजेश जी ने कहा
जी
कि शबिस्ता जी प्रेम किसको कहते हैं, तो मैं आपको
क्या
बताऊं
आपकी
कि शायद
आवाज
आप
बढ़
बहुत
जाए, कट
जी, मैंने ब्रजेश जी से
गई थी आपने क्या?
हाँ जी, हमने कहा कि एक दिन ब्रजेश जी ने मुझसे कहा कि शबिस्ता तुमको क्या
जी
सुनाऊं, ओ शबिस्ता तुम प्रेम पर कुछ सुनाओ मैं चाहता हूं। तो हमने कहा कि प्रेम पर हम क्या सुनाएं, प्रेम पर तो हम कुछ सुना ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली, तो मैंने एक गीत लिखा, सुनिए।
बिल्कुल
कि
सुनाए।
शांत सागर में को सुनामी में न परिवर्तित करो, छोड़ दो ये जिद, कि शांत सागर को सुनामी में न परिवर्तित करे, छोड़ दे ये जिद कि हम भी प्रेम परिभाषित करें, हम सफर बन कर अवन के साथ जो चलता रहा, कैसे परिभाषित करूं उस नभ के मैं विस्तार को, और गोद में सागर के जो अंगड़ाइयां लेती रही, कैसे परिभाषित करूं लहरों के उस संसार को, एक गूंगा स्वाद बोलो कैसे उच्चारित करे, छोड़ दे ये जिद कि हम भी प्रेम परिभाषित करें। अब माप पाऊं बिना नदियों के प्रबल प्रवाह को, माप ना पाऊं ये बढ़ती प्रीत के उत्साह को, व्याख्या कैसे करूं मैं वेदना संत्रास की, या कि अपने संयमित श्वासों के मैं संन्यास की, शांत सागर में कहो तूफान को आमंत्रित करे, छोड़ दे ये जिद की हम भी प्रेम परिभाषित करें।
बहुत
और
सुंदर।
भगवान कवियों ने पपीहे पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन
अच्छा
पपीहे का दर्द तो सबने देख लिया, क्या किसी ने स्वाति का दर्द महसूस
वाह,
की? पंक्तियां सुनिएगा
सुना।
कि क्या पपीहे सी मुखर कर दूं मैं अपनी वेदना, या स्वाति की तरह खामोश हो संवेदना, या भरूं वो रंग दुनिया देख ले ये अल्पना, या बना लूं कोरे नैनों की तुम्हें मैं कल्पना, है असंभव स्वाति बूंदे पीर को दर्शित करे, छोड़ दे ये जिद की हम भी प्रेम परिभाषित करें। और ना छुअन की है जरूरत ना ही आलिंगन की चाह, ना समर्पण की जरूरत ना कभी चुंबन की चाह, आत्माओं के मिलन को कैसे परिलक्षित करें, छोड़ दे ये जिद की हम भी प्रेम परिभाषित करें।
वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत ही सुंदर रूप में आपने प्रेम को परिभाषित कर ही दिया शाबिस्ता जी। लेकिन फिर भी
जी
अच्छा, अब एक और रूप आपका, मतलब मुझे लगता है कि आज से कोई 2-3 साल पहले आपका नाम बहुत ज्यादा, आपका और ब्रिजेश जी का न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में छाया हुआ था। और वो बात जो ये थी उसको जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, और चुभन के श्रोता भी जानना चाहेंगे शाबिस्ता जी, कि आपने और आपके पति ने बंदर को पाला, और न सिर्फ पाला बल्कि उसका विवाह भी कराया, बंदर के लिए एसी और हीटर के कमरों का इंतजाम किया। मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों ने बच्चे की तरह बंदर का पालन पोषण किया, तो इस बारे में कुछ बताएं। आपके
हाँ देखिए
बारे में बहुत
भावना
ज्यादा, हम लखनऊ में भी हर जगह मीडिया में आप लोगों का बहुत आता था, लेकिन जो नए श्रोता हैं और जो दूर दूसरे शहरों के, मैं चाहूंगी कि आप उनके उनको बताएं कि कैसे आप लोगों का इस तरफ वो हुआ कि बंदर के लिए आप लोगों ने इतना कुछ किया।
जी, और भावना जी ये सच है कि पूरे देश की मीडिया ने जो है इस खबर को बहुत
बहुत
प्रचारित
बहुत
किया,
जी,
जबकि मेरे लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी। एक्चुअल वो ऐसा था कि कोई बच्चा नहीं था हमारे, और आप जानती हैं कि हम लोगों के बच्चे हैं नहीं,
जी
तो अक्सर होता ये था ना कि देखिए आज जो है समाज में जो नफरतों का माहौल चल रहा है,
जी
तो हम लोग बैठे तो हम जैसे कहें कि अगर कोई बच्चा जो है मुस्लिम लेंगे तो वो तुमको नहीं मानेगा, वो कहेगा
हम्म,
तुम हिंदू हो अगर हम पहले मर गए तो, और अगर कोई हिंदू ले लेंगे तो हो सकता है कि कल को वो कहे कि भाई ये तो मुस्लिम है, ठीक है फिर टकराव
जी
स्थित हो। तो हम बैठे हुए थे यही, क्योंकि देखिए भले ही सारी शादी सहजता से हो गई लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सब कुछ सुनने को मिला था हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम की भावना तो कहीं ना कहीं दिल तो आहत था ही। तो हम
जी
बैठे हुए थे तो हमने कहा जी क्यों ना हनुमान जी के वंश पाला जाए।
वाह,
अच्छा तो हमने एक बंदरिया जो है वो एक लोग मार रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब बंदरिया को ना मारिए, तो उन्होंने कहा बड़ा प्रेम आ रहा है तो खरीद लो 300 रुपए का।
जी
हमने कहा चल दे दो 300 रुपए की, तो उस
जी
बंदरिया को हम ले आए,
अच्छा
और आपसे बताएं कि उस बंदरिया का नाम हमने टिन टिन रखा। तो
अच्छा
जब वो घर में आ गई तो घर में बड़ा अच्छा माहौल है, दिन भर उसके साथ खेलना ये करना, तो लेकिन हमको ये नहीं पता था कि बंदर गुलाटी खाता है।
अच्छा
हम उसको खाना पीना खिलाकर और बांध कर और चले गए कोर्ट, और
जी
वो हमारे घर में और तो कोई था नहीं, ब्रजेश जी भी अपने काम से, हम लोगों ने कहा कि खाना वाना तो खिला ही दिया है, और वो क्या हुआ, खेलते खेलते ना उसकी फांसी लग गई अपने आप वही बंधन में।
जी
तो जब वो आई ना, तो मतलब हम आए तो जब उसकी लाश हमको मिली तो जैसे मतलब इतना अपराध बोध हमारे मन में आया कि जैसे ये लगा कि बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया। तो
जी
हाँ, तो फिर हमने जो है कहा कि एक तो देखिए कहीं ना कहीं हनुमान जी का भी भय था मन में है कि
जी जी
उनके साथ इतनी बड़ी गलती हो गई, और
जी
वैसे भी बचपन से जीवों का बहुत प्यार था, भले ही हम मुस्लिम धर्म में जन्म लिए हो लेकिन कभी भी मैंने कुर्बानी जैसी प्रथाओं का समर्थन नहीं किया। मैं
जी
खुलेआम
जी
कहती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, न बलि प्रथा न कानूनी प्रथा, जीवों को को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति भी कहलाती है, और इधर भी अगर आए हम इस्लाम की तरफ तो मौला अली ने साफ साफ कहा है कि अपने पेट को जानवरों का मकबरा मत बनाइए, खुदा ने सब्जी पैदा की है उसको खाइए। तो हम बहुत दूर रहते हैं इन सब चीजों से, तो यहाँ पर तो भाई भय दो दो हो गए। तो
जी
हमने कहा कि मन ही मन हमने कहा कि ऐसा है कि अब बेकार में डॉक्टरों के चक्कर छोड़ो, चलो अब जो है अपनी गलती की सजा खुद भुगतते हैं, और ये पाप हम लोगों के हाथों से हुआ तो अब हम लोग असहाय बंदरों को ही पालेंगे।
अच्छा
तो हाँ, तो बस मतलब इतना साफ समझिए आप कि हमने अपने आप को दंड दिया
जी
कि मुझसे गलती हुई तो मुझको दंड भी भुगतना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कभी आपसे बताया ना, हम डॉक्टर के पास गए कि भाई हमको बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है ना, हम परेशान हुए। तो
जी
फिर हम ले आए एक बच्चे को मदारी के पास से, उसका नाम हम लोगों ने चुनमुन रखा।
जी चुनमुन के नाम से तो मीडिया में पूरा छा गया था आप लोगों का नाम। जी
चुनमुन को हम मतलब वो क्या बताए ना, आप ये सोच लीजिए कि वो 2017 में एक्सपायर हुआ चुनमुन, उसकी
अच्छा
हमने खूब धूमधाम से शादी किया, और वो बेजुबान जरूर था लेकिन अगर आप उससे पूछो कि तुम्हारे मम्मी कौन है पापा कौन है तो वो कपड़ा पकड़कर आपको बता देता था। और ये भी
वाह
समझ लीजिए कि मैंने उनको कोई ट्रेन नहीं किया था, क्योंकि ट्रेन करने के लिए आपको छड़ी उठानी पड़ेगी,
बिल्कुल
और हम नहीं
बिल्कुल
चाहते थे कि हम मतलब उनको आ, 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 किसी भी तरह का कष्ट हो। हमने उनको कभी फूल की छड़ी तक मतलब जो है नहीं घुमाई, तो फिर डंडे और लाठी की तो कोई बात ही नहीं जाती, वो जो
जी
कहते थे हम वो करते थे, मतलब वो
बच्चे
हमारे इशारे पर नहीं चलते थे, हम उनके
जी
इशारे पर चलते थे।
हाँ
तो वो था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि कोई है नहीं तो चलो चुनमुन के नाम से ट्रस्ट बना दिया जाए अपनी
जी
प्रॉपर्टी को। तो हम गए थे प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाने, तो वहां पर ये नवभारत टाइम्स के बैठे हुए थे शुक्ला जी, शैलेश शुक्ला जी थे और रोहित मिश्रा जी थे। उन्होंने कहा कि अगर आप ये हमको न्यूज दे दो तो ब्रेकिंग न्यूज हमारी बन जाएगी और
जी
अखबार में हमारे पैर मजबूत हो जाएंगे। तो अच्छा,
जी
वो भी बच्चों जैसे थे, तो हमको ये
जी
लगा कि अगर हमारी किसी बात से किसी को लाभ पहुंच रहा है तो दे देनी चाहिए। उसके
जी
पीछे कोई भी उद्देश्य हमारा नहीं था प्रचारित प्रसारित होने का, क्योंकि ये
जी
मेरा व्यक्तिगत प्रेम था।
जी
मतलब अगर
बिल्कुल
आप इसको कहिए कि हम ये कहें कि हम बहुत बड़े पशु सेवी हैं तो हम इसको नहीं देंगे, ये हमारा व्यक्तिगत प्रेम था, हमारी अपनी जिंदगी थी, हमारी निजी सोच थी।
जी
तो अच्छा, फिर उन्होंने खबर क्या दिया कि
आपके
मीडिया
जीवन
वालों
को
को,
इसने पूरा किया था बंदरों के इस प्रेम ने, है ना।
हाँ तो मीडिया वालों की लाइन लग गई, ठीक है, और
जी
भाई पूरी वर्ल्ड की मीडिया आ गई, ठीक है, और
अच्छा
हमारा चुनून जो है वो कैमरामैन से हो गया परेशान बुरी तरह से।
अच्छा
तो जो है एक दिन जो अच्छा उस बीच जो है चुनमुन जब परेशान हुआ तो जो है परेशान क्या, उसकी चोट भी लग गई इसी आपाधापी में। तो हमने
जी
कहा कि एक थे कहीं बाहर की मीडिया थी शायद फ्रांस फ्रांस की, तो उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए आप करवा दीजिए, हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भेज देंगे। तो हमने कहा भाई साहब आप चाहे जहां भेज दो, हम अपने बंदर को कष्ट में नहीं देख सकते, वो मेरे
जी
लिए बच्चा है और उसकी चोट लगी हुई है। और तो उन्होंने कहा अरे क्या हुआ, तो हम समझ गए कि मतलब यहाँ कोई सहानुभूति नहीं है, बस एक ब्रेकिंग न्यूज पाने का पूरा
बिल्कुल
है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी में से दो शाम वाम को हमको पता चला कि किस मतलब जो है मीडिया वाले किसी पशु सेवी के पास गए थे और वो उस पशु सेवी से कह रहे थे कि शमिस्ता ब्रिजेश पर FIR करो क्योंकि इन्होंने जंगली जानवरों को अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। तो हमने
बताइए
कहा मतलब मीडिया जो है मसाला खोज रही है।
ठीक
आप
है। हाँ
वो मेरी निजी जिंदगी थी, मेरा निजी प्यार था, उसमें मसाला ढूंढने की कोशिश। तो बस फिर वहीं से हमने ब्रेक लगा दिया। फिर कोई
जी
भी आया तो हमने कहा नहीं, हमको ना कोई इंटरव्यू चाहिए और ना ही हम अब कोई भी जो है अपनी जो है न्यूज देना चाहते हैं मीडिया में। उस दिन से फिर हमने कभी भी चुनमुन को जो है सामने नहीं आने दिया। अभी 2 दिन पहले चुनमुन की पत्नी खत्म हुई, बिट्टी। तो फिर
अच्छा
आपको पता है कि फिर आप राती राता मुझे चुनमुन को गोद लेना पड़ा लीगली,
अच्छा
चुनमुन बिट्टी को, अपने आप को सेफ करने के लिए। अगर वकील ना होते तो हम तो मीडिया को मसाला लेने के चक्कर में लटक गए थे। तो
बताइए।
जिसे आप समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी आपकी न्यूज छाप दे तो उससे खुश मत होइएगा, क्योंकि कहीं
बिल्कुल
ना कहीं वो केवल अपने पेपर अपनी TRP के लिए ऐसा कर रहा है।
जी
आपसे
जी
व्यक्तिगत सहानुभूति हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि
जैसे कि
ये
अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि हमारे निजी अधिकारों का हनन हो जाता, मतलब हमारी प्राइवेसी तो रहती ही नहीं, फिर खाली मतलब मीडिया में ही ये सारी चीजें उछल कर आ जाती हैं। अभी जैसे हम लोग
जी
पहले भी बात कर रहे थे सोशल मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की।
जी
बिल्कुल
तो देखिए निजी जिंदगी का अपना मतलब वो सुख होता है। तो बस फिर वहीं से मैंने जो है वो ब्रेक कर दिया। फिर चुनमुन खत्म हुआ तो भी हमने किसी को नहीं आने दिया, मतलब
जी
फिर हम बिल्कुल दूर ही हो गए। उस घटना ने इतना कहीं हमको हर्ट किया था कि बताइए, मतलब एक तरफ आप कह रहे हो शविस्ता ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरी तरफ आप पशु सेवियों से कह रहे हो शविस्ता पर FIR करो।
क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी ना, आप उनका इंटरव्यू देते और बोलते तो फिर आप बहुत अच्छे हो जाते, नहीं मानी तो फिर आपको इस तरह से कह दिया।
तो हमने पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कुछ दिन खबरें चलनी चाहिए ना। तो अरे हमने कहा खबरों के चक्कर में तुम किसी की ममता को नीलाम कर दो सरिया।
जी
अच्छा और ये तो कहिए कि चुनमुन हुए, बिट्टी हुए, ये सब विकलांग बंदर हैं, आपसे बताएं, जो
अच्छा
अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। इनको हम अपने हाथों से खाना पानी खिलाते थे,
जी
तब हमको वो बच्चे जो है ना वो गोद मिल गए थे।
मैं समझ सकती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपसे बात की तो बिट्टी का मतलब बिट्टी खत्म हुई थी तो आप बात नहीं कर पा रहे थे उसके दुख में। तो ये होता है कि जब हम जानवर हो या कुछ भी इंसान का बच्चा हो, अगर हम ममता रखते हैं तो मन में दुख तो आएगा ही ना उसके
हाँ
जाने से।
जी
और कुछ कहना चाहें शाबिस्ता जी? मैं एक बात सोचती हूँ कि आज के समय में जैसे लगता है संवेदनाएं मरती जा रही हैं, हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। और आप क्योंकि कवित्री भी हैं, और कवि रचनाकार जो है वो तभी सफल माना जा सकता है जब उसके अंदर संवेदनाएं हों, नहीं तो खाली काव्य रचकर सुना देने का तो शाबिस्ता जी कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपको नहीं लगता, आप तो इतनी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवित्री हो, पूरे देश में आपके काव्य पाठ होते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आज रचनाकार भी संवेदना शून्य होते जा रहे हैं? क्या समाज में परिवर्तन लाने के लिए रचनाकारों को भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैंने देखा, देखा क्या मतलब आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं इस भीड़ में मंचों पर तो हम भी शामिल रहे होंगे, है नहीं, कि हम
जी
कहते
बिल्कुल
हैं कि हम बहुत पाक साफ है, ठीक है, मैंने तो जो है ये नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो हम अपने आप को भी उसी भीड़ में रखकर आपको उत्तर दे रहे हैं कि
बिल्कुल
कहीं ना कहीं तो संवेदनाएं शून्य हुई हैं। क्योंकि
जी
एक पुराना समय याद कीजिए आप, तो छत्रसाल जब उसमें रास रंग में डूब गए थे तो
जी
भूषण जी ने उनको जो है सचेत किया था और तब
जी
उनको अपना राजधर्म याद आया था।
जी
पृथ्वीराज चौहान से अगर चंद बरदाई ने कहा कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जब लाल बहादुर शास्त्री जी लाल किले से उतरते हुए लड़खड़ाए और दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया और उन्होंने धन्यवाद कहा तो दिनकर जी ने उत्तर दिया कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे संभालता है।
बहुत
लेकिन करके कहूंगी कि आज हम लोग ये कार्य करने में असमर्थ हैं, इसलिए कि हमारी संवेदनाएं हमारी भावनाएं दोनों मर चुकी हैं। हम लिखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि मंचों पर हमें सस्ती तालियां मिले, हमें अच्छा पेमेंट मिले, क्योंकि आज अगर मैं प्रमाण दे रही हूं, आप सोशल मीडिया पर उठाकर कवियों की पोस्टें पढ़ डालें, शायद ही 100 में से 10 लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अंदर युग बोध होगा, जिन्होंने कल लेखनी चलाई होगी इस समय की तत्कालिक समस्याओं पर।
जी
बाकी सब सत्ता के चारण है, बस भावना जी, इससे
जी
अधिक कुछ नहीं कहते
बहुत
हैं।
सही आपने कहा शाबिस्ता जी, ये सत्ता के चारण ही हो गए हैं तो इसीलिए अब कुछ हो भी नहीं पा रहा है।
क्योंकि भावना जी अपनी इतनी जिंदगी में हमने साहित्यिक पहलू को भी जिया, धार्मिक आध्यात्मिक पहलू को भी जिया और हमने राजनीतिक पहलू भी जिया,
जी
तो कहीं ना कहीं तीनों को जब समाविष्ट करके देखते हैं तो हर जगह चरण ही चरण दिखाई देता है।
जी बिल्कुल
और भले ही हम कितना कहें कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन कभी मैं कहूंगी जो जैसे मतलब हमको हंसी आ रही थी कि बीच में जिस दिन पत्रकार किसी की लाश पर कूदा था, ठीक है, वो कैमरामैन, ठीक है, तो
जी।
ऐसी घटनाओं पर भी जब कवियों का मौन नहीं टूटता तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि हमारी कविता लिखने से फायदा क्या, सिर्फ खड़े हो गए, हमने शुरू कर दी चारण काल की कविताएं, तो ऐसी कविता लिखने से क्या फायदा।
और
हमने
आपको नहीं लगता कि पक्षपात भी बहुत होता है किन्हीं जगहों पर? तो मतलब छोटी सी कोई घटना होती है उसपे सारा मीडिया, सारे कवि, सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो है उस तरफ दौड़ते हैं, उधर ही का पक्ष लेते हैं। और कहीं पर इतना कुछ हो जाता है, जैसे अभी कश्मीर के मुद्दे पर हम लोग कई आए हमारे यहाँ कई मेहमान आए जिन्होंने कई कवि थे या स्कॉलर थे जिन्होंने आकर कश्मीर के मुद्दे पर बोला, तो मुझे हम लोग इतना नहीं जानते थे कश्मीर के बारे में कि वहां पर इतना अत्याचार हुआ है कश्मीरी पंडितों के ऊपर। तो जब मैंने जाना तो मुझे यही लगा कि क्या हमारी संवेदनाएं एकदम मर नहीं गई हैं? क्या हम लोग उनके कुछ भी नहीं लगते कि हम उनके बारे में कुछ सोचे भी ना? तो
जी
कोई भी नहीं
देखिए,
सोच पाता।
आप भावना जी यहाँ पर हम आपसे एक बात कहेंगे
जी
कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस समय कश्मीर में ये घटना हुई,
जी जी
ठीक है, वीपी सिंह जी की सरकार थी मेरे विचार से देश में, और कश्मीर में भी मेरे विचार से राज्यपाल शासन था, शायद जगमोहन जी का था, क्या था ठीक है याद नहीं है, ठीक है, जिसका भी रहा, जब ये घटना हुई तो कहीं भी चर्चा में नहीं आई, ठीक
ना
है, अब जब एक समय बीत गया तो ये चीजें चर्चा में आ रही हैं, क्यों? क्योंकि कल जब ये घटना हुई थी तो सरकार को इसमें कोई राजनीतिक फायदा
नहीं
नहीं
दिखा,
मिला,
वोट बैंक नहीं थे ना कश्मीरी पंडित, इसलिए नहीं फायदा
कश्मीरी
दिखा।
पंडित
जी
वोट बैंक नहीं थे, आज
जी
कश्मीरी पंडित वोट बैंक हो गए। मैं आपसे बताऊं कि मैं जिस साहित्यकार को जानती हूँ जिसने कश्मीर की जनता पर
जी
सबसे अच्छा काम, सबसे सॉलिड काम, सबसे धरातल पर काम अगर किया है किसी ने तो अशोक कुमार पांडे जी ने। हाल में ही कश्मीर पर उनकी दो पुस्तकें आई हैं, एक
जी
कश्मीर नामा और एक कश्मीर से ही संदर्भित है, नाम थोड़ा सा हम विस्मृत हो गए हैं। मैं
जी
चाहूंगी भावना जी आप और या जो भी व्यक्ति हमको सुन रहा है वो
जी
अशोक पांडे जी की ये पुस्तक जरूर पढ़े, तो इससे वो कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ पाएगा, वो
जी
दर्द जो बगैर किसी राजनीतिक फायदे के लिखा गया, वो
जी
दर्द जो बिना किसी प्रशंसा की लालसा किए हुए लिखा गया।
जी
तो मैं ये चाहूंगी कि आप अशोक पांडे जी को जो है वो जरूर पढ़ें इस बात को, तो यकीनन जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल
और
पढ़ेंगे।
दूसरी उनकी किताब है, एक है कश्मीर नामा, दूसरी है कश्मीर के पंडित।
अच्छा
देखिए
अच्छा जी। बिल्कुल। और मतलब इतना बड़ा ये एक मुद्दा रहा हमारे देश का, सन 90 से ये सारी चीजें हुई, और जैसा आपने कहा कि उस समय तो नहीं सामने आने दिया, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया था भी नहीं इतना ज्यादा, लेकिन आज जब है भी तो भी मुझे लगता है कि उसको ठीक रूप से हम अभी भी नहीं जान पा रहे उन चीजों को।
हमने आपसे क्या कहा, जब मैंने कश्मीर नामा पढ़ी, जब मैंने कश्मीर के पंडित पढ़ी, ठीक है, तो
जी
लगा कि नहीं, ये तो मतलब इतना लोमहर्षक मुद्दा था, आप समझ
जी
रहे हैं, कि जिसको
बिल्कुल
सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन
बिल्कुल
आज भी कहना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली जिसके
नहीं
वो
मिलता, बिल्कुल
अधिकारी
नहीं।
है, जिसके वो अधिकारी हैं, जो
जी
उनको मिलना चाहिए। उनका नाम तो भुनाया जा रहा है, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही।
नहीं दी जा रही है,
आप समझ रहे हैं कि
बिल्कुल
कहते
समझ।
हैं, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी घर लगाया तो काटो की नोक से। तो
वाह
कश्मीर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मरहम काटो की नोक से लगाया जा रहा है।
ज्यादा, बिल्कुल ठीक कहे आप।
अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप बेशक मुझको रोक सकती, लेकिन हम हकीकत बात कह रहे हैं।
बिल्कुल
और वो जो कहना हमारा ये है कि कश्मीरी पंडितों को तो असली न्याय तब मिलेगा जब वो अपनी कश्मीर की वादियों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकेंगे। शायद
जी
मैं भगवान से कामना करूंगी कि वो पल आए कि कश्मीरी पंडित भी अपने वतन में अपनी मर्जी से, अपनी
बिल्कुल।
इच्छा से अपना जीवन यापन कर सके।
लेकिन मतलब देखा जाए तो इसके ऊपर धरातल स्तर पर कुछ किया जा रहा हो ऐसा लगता नहीं अभी भी।
बस बस, हमने क्या कहा आपसे कि भुनाया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा।
काम
और
नहीं
इसी
किया।
पे हमको अशोक पांडे जी की किताब जो है बहुत अच्छी लगी थी,
जी
कि
जी
उन्होंने जो उठाए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए सवाल, ये संदेह जो है वो बहुत अच्छे हैं। और मैं अग्निशेखर जी को भी आपके ही उस पर पढ़ूंगी अब और
जी जी
सुनूंगी।
उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, अभी पिछला कार्यक्रम उन्हीं का हुआ था हमारे यहाँ, और मतलब बहुत ही भावुक उनकी कविताओं को मैंने पढ़ा, उनकी रचनाओं को पढ़ा, तो मन इतना भावुक हो जाता है कि मैं सही आपको बता रही हूँ, आपसे मैं ये बात बोल सक रही हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हो इस चीज को कि पूरा पढ़ा नहीं जाता, इतना मन भावुक हो जाता है कि
जी नहीं
कैसे
नहीं
बेघर कर दिया, और यहाँ पर आकर भी अपने देश में भी वो बेचारे शरणार्थी बनकर, और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है उनके पास, पानी और बिजली के लिए भी उनको ठीक से नहीं कुछ मिल पाता, तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि किस जगह से वो लोग आए थे, और यहाँ पर आकर उनके साथ उनको क्या इंसाफ मिल रहा है, और हम लोग तब भी कुछ नहीं देख पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, आखिर है तो वो भी हमारे ही अपने लोग।
और आपसे पता है, मतलब आप जो है इस समय जो है, जैसे आपसे बताएं कि हम लोगों की, मतलब हम जिस जहां जन्म लिया हमने
जी जी
शिया कम्युनिटी में, तो वहां पर कश्मीरी पंडितों का मतलब एक तरह से पूजनीय है। आप समझिए, उस कास्ट में अगर मुहर्रम में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, तो जो
जी
कश्मीरी ब्राह्मण शहीद हुए हैं उनका भी गम मनाया जाता है। आप समझ रहे हैं, तो
अच्छा
हमने जब हमको ये सब बातें बहुत बाद में पता चली, समझ रहे हैं, उस
जी
समय
जी
नहीं पता चली, 90 में जब
जी
पता चली, तो मैंने सवाल किया इस बात का कि भाई 90 में आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया,
जी
केवल घर में उनको पूजनीय बताकर कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है।
जी
हमें तो उनके लिए सड़कों पर उतरना चाहिए।
बिल्कुल
और मैंने जो है वो मतलब उनको, मैं खुद भी मिलकर जो है वो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन से यह बात करूंगी कि आप लोगों को कश्मीरी पंडितों के साथ उतरना चाहिए। अगर आप ये मानते हो कि आपके देवताओं पर कश्मीरी पंडितों के बहुत एहसान है, तो प्लीज बोलिए आप कि उनको
जी
वो अधिकार मिले उनको।
जहां तक मुझे लगता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, कुछ भी जो भी हो रहा है वो सिर्फ दिखावा हो रहा है, कि ठीक है जैसा पब्लिसिटी पाने के लिए भाई हम गए और हमने दिखावा, अग्निशेखर जी ने भी हमारे कार्यक्रम में बोला कि दिखावा होता है, लोग जाते हैं बस फोटो खिंचा ली या शॉल एक दूसरे को उड़ा दिया और थोड़ा सा तरस खा के चले आए, लेकिन तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्यों कश्मीरी पंडितों पर तरस खाई जाए, वो उस लायक है ही नहीं कि उन पर तरस खाई जाए, वो तो इतने सक्षम है, उनको उनका उचित स्थान मिलना चाहिए सिर्फ।
वही वही बता रहे हैं कि मतलब उनको आप उनका हक दीजिए ना, देश
बिल्कुल, उनका अधिकार उनका हक मिले, बिल्कुल।
तो
बहुत अच्छा कि आपने बिस्का जी, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कभी हम इस पे अलग से भी बात कर सकते हैं। और लेकिन जितनी भी बातें आज आपने बताई वो बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और जहां तक मेरी पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इन बातों को बहुत ही पसंद करेंगे, आपके सारे विचारों को सुनेंगे, और बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा अभी आपसे और भी बात करूं। और ये आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि फिर आप जल्दी से हमारे कार्यक्रम में आए और किसी और पहलू पर हम लोग बात करें।
जी बिल्कुल
जी, बहुत
बिल्कुल,
बहुत आभार आपका शाबिस्ता जी कि आपने इतना समय हमें दिया अपना।
धन्यवाद भावना जी।